नमस्कार, एसबीएस हिंदी से मैं हूं साहिल मक्कड़ और आज मेरे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रा बाला। प्रोफेसर बाला पर्सनल आई न्यू साउथ वेल्स में आई स्पेशलिस्ट हैं और मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बाला, आपका एसबीएस हिंदी में स्वागत है।
नमस्कार साहिल साहब।
प्रोफेसर बाला, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट और फेडरल सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आप बढ़ते हुए यूवी से थोड़ा सावधान रहें, उससे आपको कैंसर हो सकता है, आपकी आंखों पर फर्क पड़ सकता है, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
जो यूवी लाइट जिसे कहते हैं, उसे हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो जो है आमतौर पे जो रोशनी हम पर गिरती है उससे ज्यादा उसमें है ऊर्जा, और जो उस ऊर्जा से तुरंत नुकसानी हो सकती है, और अगर दोबारा आप 15-20 साल से एक्यूमुलेट करें तो उसके बाद भी उससे हानि पहुंच सकती है। हमें इतना पता है कि अगर आप बाहर जाते हो और आप काला चश्मा वगैरह प्रोटेक्शन नहीं पहनते तो उसके कारण कई हानियां हो सकती हैं, पहुंच सकती हैं आंखों। एक जो है अभी अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं अभी ये खेल खेलते हैं जो वो सूरज की रोशनी की तरह सूरज की ओर देखते रहते हैं,
सूरज से आंखें मिलाते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं।
हाँ, सूरज से आंखें मिलाए और वो भी है एक कभी कभी 30 सेकंड तक जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि सूरज की रोशनी सीधा रेटना पे फोकस हो जाती है और वहां पे जो है उसके कारण तापमान बढ़ जाता है सेल्स में और वो जल जाते हैं, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप वो बस 30 सेकंड में हो गया खत्म। और इसीलिए जब सूर्य ग्रहण भी होता है तो उसे कहते हैं कि सूरज की ओर ना देखा करें। ये जो हानियां हैं तो तुरंत हो जाती हैं एकदम 30 सेकंड में 25 सेकंड। इसके अलावा और भी हानियां हैं जो कई साल लगते हैं उन्हें होने में, जैसे कि आंखों पे टेरिजियम का उगना। टेरिजियम जो है एक मास की तरह है, वो जो आपके आंखों के ऊपर बढ़ता जाता है और बीच तक आ सकता है, और आमतौर पर लोग उस टेरिजियम को देख के समझते हैं कि वो मोतियाबिंद है। वो कैटरेक्ट अलग चीज है, टेरिजियम अलग चीज है। इसके अलावा मोतियाबिंद भी जल्दी आ जाते हैं, तो कई और ऑफ कोर्स कैंसर्स भी हो सकते हैं।
प्रोफेसर बाला, आपने एक तो आपने बताया कि 30 सेकंड में होता है कि आप डायरेक्ट सन के साथ आई मीट कर रहे हैं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप सन के साथ आई मीट नहीं कर रहे हैं और आप एक लंबे समय तक पोजर है सन के साथ में, तो ये कितना लंबा समय होता है जब किसी इंसान को इस तरीके की बीमारियां हो सकती है?
जो कितना एक्सपोजर होना चाहिए, आप कितनी देर बाहर धूप में बैठ सकते हैं, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं
जी।
इस बात में संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप धूप में नहीं गए, अगर आपने अपने बच्चों को कमरे में अंदर बंद करके छोड़ दिया तो वो ज्यादा शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं
जी।
ओके, इसलिए उन्हें चश्मा पहनना ज्यादा पड़ता है, वेल नोन फैक्ट है। तो बाहर जाना जरूरी है, सूरज की धूप आपके ऊपर पड़े ये अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जैसे कृषि वगैरह कर रहे हो, आप लाइफ सेविंग वगैरह कर रहे हो तो आपने उस वक्त काला चश्मा वगैरह पहनना है, और वो भी काला चश्मा ऐसा होना चाहिए जो अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक करे, ए बी ओ सी। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप ये चश्मे वगैरह भारत से खरीद के लाएं तो वहां के स्टैंडर्ड्स यहाँ के स्टैंडर्ड से अलग है। अब इंडिया में ISI का स्टैंडर्ड है, वो आप देख ISI का स्टैम्प छापा आप देख रहे होंगे वो प्रेशर कुकर वगैरह पे, वो स्टैंडर्ड वहां के लिए उचित है। यहाँ का स्टैंडर्ड 2016 तब बदला था कि हर सनग्लासेस के लिए काले चश्मे वो UVA, UVB और UVC तीनों को ब्लॉक करने की जरूरत थी, वो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस 2016 में हुए। तो अगर आप यहाँ पर खरीद रहे हो और यहाँ पर का स्टैम्प है तो यू कैन बी रीअश्योर्ड कि भाई ये यहाँ के लिए उचित है, यहाँ पे काम करेगा। और वैसे भी अगर आपको इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं, आप कैंसर काउंसिल के पास जा सकते हैं, वहां पे चश्मे बेच रहे हैं, वो सारे यूवी प्रोटेक्ट करेंगे, और उनका डिजाइन आमतौर पर ऐसा है कि वो रैप अराउंड है कि साइड से बगल से कहीं रोशनी अंदर ना आए। सो चश्मे का लेंस भी जरूरी है और उसका फ्रेम भी जरूरी है कि उसका डिजाइन जो है अच्छा होना चाहिए
जी। प्रोफेसर बाला, कई बार देखा गया है कि जो लोग जो है इंडिया से चश्मा बनवा के आते हैं, आंखों का चश्मा बनवा के आते हैं, तो क्या उनके लिए उनको भी अपना चश्मा नया बनवाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आके, क्योंकि जो यहाँ पे जो चश्मा बना है वो शायद इंडिया के मानकों के हिसाब से बना हुआ, तो इसमें आप क्या सलाह देते हैं?
आमतौर पर जो अब नए पारावासी लोग आए हैं वो तो चश्मा बना के आएंगे, इसके अलावा भी लोग टूरिज्म के लिए इंडिया जाते हैं और वहां पे सस्ता है इसलिए चश्मा खरीदते हैं। इसमें गलत कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स एक जैसे हों और ढंग का चश्मा बना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एयरप्लेन में घुस जाते हैं और इमीडिएटली तुरंत ही चश्मा काम करना बंद कर देता है, वो इसलिए कि आइदर स्क्रिप्ट में गलती हो या फिर उसका सेंट्रेशन ठीक नहीं हो या उसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग नहीं हो या उसमें यूवी प्रोटेक्शन, कई काम है। एक चश्मा बनाने में काफी एफर्ट जाता है। और अब आजकल क्योंकि कोविड के कारण कोई भारत जा नहीं रहा तो वो यहाँ पर अपना चश्मा बदलवा रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे चश्मा बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप वापस दुकानदार के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये ठीक से नहीं बनाया, हमारा रिफंड दे दीजिए या नया चश्मा।
जी, तो क्या ये चीज लेंसेज के मामले में भी लागू होती है? मैंने देखा है कि हमारे इंडियन कम्युनिटी में काफी लोग जो है कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं, तो उस केसेस में आप क्या सलाह देते हैं?
कॉन्टेक्ट लेंसेज थोड़ा अलग है। कॉन्टेक्ट लेंसेज अगर आप खरीद, देखिए ऐसे कोई कॉन्टेक्ट लेंस नहीं है जो आपने एक बार आंख में डाला तो एक साल के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा केस हम देख चुके हैं पहले कि ये कोरिया वगैरह से आए हैं और उन्होंने वहां पे खरीदा है और किसी ने उनसे कहा है कि भाई बदलवाने की जरूरत नहीं है, एक साल पहने रहो, ये परमानेंट है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो आमतौर पर डेली डिस्पोजेबल या मंथली वगैरह कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं
जी,
उन्हें पहनने से उनकी देखभाल ठीक से करनी है, क्योंकि अगर उसमें से कोई इन्फेक्शन हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। हर रात को कॉन्टैक्ट लेंस निकाला करें और निकाल के उसे साफ किया करें। रात को आप सो रहे हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी सफाई और उसकी देखभाल अपनी कॉन्टैक्ट लेंस की बहुत जरूरी है। अपनी थूक से कोई सफाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे करते हैं या नलके के पानी से साफ करते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए और रात को भी नहीं पहनना चाहिए।
जी प्रोफेसर बाला, मेरा सवाल ये था कि क्या जब हम आंखों का चश्मा खरीदते हैं या हम लेंसेस लेते हैं तो उस समय भी हमें क्या कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणों के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए या हम सीधा जाके खरीद सकते हैं?
जब आप चश्मा खरीद रहे हो आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से पूछ सकते हो कि इसमें यूवी फिल्टर है या नहीं, पर आमतौर पर उसमें वो काला भी नहीं होगा। कई कबार ट्रांजिशन लेंसेज हैं जो आप अंदर जाएं तो काले हो जाए, जो चश्मा जो है सफेद हो जाएगा, बाहर जाओगे तो काला हो जाए, लेकिन वो एक दो साल के बाद उसका रंग जो है ठीक समय पर नहीं बदलता, तो उसमें दिक्कत होती है। तो अगर आप हो सके तो अगर आप दो अलग चश्मा बनाए तो बेहतर।
तो प्रोफेसर बाला, आप हमें बता रहे थे एक ऑस्ट्रेलिया में कैंपेन चला था 1980s में जिसे हम कहते हैं स्लिप स्लोप स्लैप स्टिक एंड स्लाइड, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि होता है कि नए माइग्रेंट्स आते हैं तो उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो ये मुझे लगता है कि उन माइग्रेंट्स के लिए बहुत, या पुराने भी जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर हम उनको इस बारे में बताएं तो।
स्लिप स्लॉप स्लैप एक वेरी सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव कैंपेन है। आप टोपी पहनिए, सनस्क्रीन डालिए और जितना हो सके लंबे कपड़े पहनिए और जब आप बाहर जा रहे हो, ताकि आप पर जो यूवी लाइट कम पड़े। लेकिन उसमें जो है काला चश्मा वगैरह ग्लासेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और इसलिए दोबारा दोबारा ये मैसेज भेजना पड़ रहा है कि भाई आप जो है आंखों को भी प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप बीच वगैरह पे जा रहे हो तो पानी से भी रिफ्लेक्शन आप पे पड़ सकती है और उसमें भी लाइट जो है वो आंखों पे असर करता है।
जी, तो प्रोफेसर बाला अगर आप मुझे बताएं, मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसका काम पूरा दिन बाहर धूप में है, तो वो उन लोगों को क्या करना चाहिए? चश्मा आपने बताया कि चश्मा उन्हें पहनना चाहिए, यूवी 400 होना चाहिए उसका और वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, इसके अलावा क्या कोई वो प्रिकॉशन ले सकते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए?
देखिए बाहर जब आप हो बस ऑटोमेटिकली काला चश्मा डाल दें तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं। जब आमतौर पर जो है भारतीयों के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो घर के अंदर आने के बाद फोन पे काफी देर लगे रहते हैं, और जब फोन पे लगे रहते हैं तो उसके कारण भी अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो पलके नहीं झपकते तो आंखें सूख जाती हैं। जब बाहर हैं तो सिर्फ सनग्लासेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
जी, तो घर में रह के क्या उन्हें लगातार आंखें धोना चाहिए, पानी डालना चाहिए, कोई आई ड्रॉप डालना चाहिए?
अगर आप घर पे हैं और आप काफी देर कंप्यूटर या स्क्रीन पर हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि एक पलकों का झपकना एक रेट होता है, और जब आप इन डिवाइसेस पे बैठे हो तो आप जो है कॉन्सेंट्रेट इतना करते हो कि आप घूर घूर के देखते हो स्क्रीन को, तो आपकी पलकों की झपकने की रेट कम हो जाती है। अगर रेट कम हो गई तो पलकों के अंदर दो तीन ग्लैंड हैं, 30-30 ग्लैंड हैं, जिनमें से तेल निकलता है। जो तेल जो है आपके आंसुओं के ऊपर एक लेयर बनाता है ताकि आपकी आंसुएं सूख न जाएं। और क्योंकि आप पलके नहीं झपकते तो आमतौर पर ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ है, कॉर्नर में कुछ रेत की तरह है, कुछ कंकड़ पत्थर कुछ है आंख में। ये ड्राई आई फीलिंग है, ये काफी कॉमन है आजकल। इसके अलावा रोज लोग रात को सोते भी नहीं है ठीक समय पर, क्योंकि सिनेमा देख रहे हैं अपने फोन के ऊपर, तो और भी सूख जाती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन इतना है कि हर 20 सेकंड आप एक बार वॉलंटरली पलकें झपकें, अच्छी तरह से बंद करके खोलें, और हर 20 मिनट कहीं दूर तक, एटलीस्ट 20 फीट तक की दूरी पर कुछ है उसे देखें। इसका मतलब है आप खिड़की के पास बैठे रहें और दूर जरा देखें कि आंखों को थोड़ी देर रिलैक्स करें, फिर आप वापस अपने काम पे आइए। अगर आप वॉलंटरली ध्यान देके ऐसे पलके झपकेंगे तो ये सारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी नहीं। इसके अलावा अगर चाहें तो आप अपने पास ह्यूमिडिफायर रख सकते हो, आंख में आर्टिफिशियल टीयर्स उनकी बूंदे डाल सकते हो, या फिर आप जो है ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह कृपया इस्तेमाल न करें विंटर में। और एयर कंडीशनिंग का भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सारी हवा की सारी वाटर वेपर ले लेती है और वो बाहर डाल देती है और इस तरह काम करती है। तो इसलिए आंखों को सूखने से भी जरा बचाने की जरूरत।
ये थे प्रोफेसर बाला, ये इनके निजी विचार है। अगर आपको कोई इश्यू है अपनी हेल्थ से या अपनी आंखों से जुड़ा तो आप अपने ऑप्टोमिस्ट और अपने ऑप्थमोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रोफेसर बाला, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you, Sahil.